फाइल 18, उपन्यास दिल एक सादा कागज, पृष्ठ 182 से। धुएं से बचने के लिए उसने एक आंख बंद कर रखी थी। राख चढ़कर प्याली में आ गई, छन से बुझ गई। रहिए, दूसरी बना देती हूँ, जन्नत ने कहा। नहीं, चंद्रशेखर ने कहा, रफ्फन को शेर सुनाने की जल्दी है। चंद्रशेखर के लहजे की कड़वाहट पर रफ्फन कांप गया। चंद्रशेखर रफ्फन की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, बोला, मैं इधर बहुत कड़वा हो गया हूँ, मगर तुम जिन लोगों को शेर सुना रहे हो, आजकल उनके लिए शेर फैशन है। जब वो लोग हा 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 हंसकर किसी शेर की तारीफ करते हैं तो तुम्हें शर्म नहीं आती? आई मीन एज अ पोएट, माला को तो शेर की तमीज ही नहीं है। मैं तो भैया इसीलिए भाग खड़ा हुआ, राम अवतार बोला। कई ड्राइंग रूमों में किसी नई चीज की तरह दिखलाया गया, मैं चुप रहा। पर जब माला जी मुझे साहित्य पढ़ाने लगी तो मुझे भागना ही पड़ा। आजकल वो काली चरण को मजदूर वर्ग का कवि साबित करने में लगी हुई हैं, और मक्खनलाल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ठाकुर साहब को गच्चा देकर उसने अपना टेंडर पास करवा ही लिया। सुना है कालीचरण का कलेक्शन छप रहा है, रफ्फन ने कहा। हाँ, राम अवतार बोला, राग जोगिया, माला जी ने भूमिका लिखी है 110 पन्नों की। पूरी किताब कितनी बड़ी है, जन्नत ने पूछा। 160 पन्नों की, चंद्रशेखर ने कहा। असल चीज भूमिका है। लगता है इस बार मक्खनलाल एमपी हो ही जाएंगे, राम अवतार ने कहा। कहिए तो अभय एक ठो फोन घुमाए दियो, रफ्फन ने मक्खनलाल की नकल उतारी। तमाम लोग हंस पड़े। हंसी ने कड़वाहट का मैल काट दिया। एक दिन मुझे चाय पिलाने घर ले गए, उनकी सारी तस्वीरें देखनी पड़ी। ये आदमी तस्वीर खिंचवाने का उस्ताद है। ऐसा लगता है कि ये पंडित नेहरू के साथ तस्वीर नहीं खिंचवा रहा है, बल्कि वो इसके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। रफ्फन रुक गया। उसने पहली बार इस बात पर ध्यान दिया कि इतनी देर में राम अवतार ने शारदा से या शारदा ने राम अवतार से कोई बात ही नहीं की है। तो उसने पहली बार शारदा की तरफ देखा। सफेद चुस्त सलवार, प्रिंटेड कपड़े की बहुत चुस्त कमीज और कमीज के ही कपड़े की एक पट्टी सी गले में। ये तो वो शारदा नहीं जिससे अभी कुछ ही दिनों पहले नारायणगंज के इसी घर में पहली मुलाकात हुई थी। भावें बनाई हुई, पलकें सजाई हुई, आईलाइनर, आई शेडो, लिपस्टिक, लंबे नाखून। तो उसने राम अवतार की तरफ देखा। वो जस का तस था। चेहरे पर कुछ लकीरें सी जरूर पड़ गई थीं, पर आदमी बिल्कुल वही था। जब किसी से कोई पैमाने वफा करता है, कांप उठता हूँ कि मेरा ही सा अंजाम न हो। चंद्रशेखर राम अवतार को शेर सुनाकर मुस्कुरा दिया। राम अवतार नहीं मुस्कुराया। चंद्रशेखर जोर जोर से हंसने लगा। शारदा भी हंसने लगी और हंसते ही हंसते उठ खड़ी हुई और अपनी शर्ट का दामन नीचे खींचने लगी। रफन भाई अब चलिए, नहीं तो दीदी मुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगी। शंकर दयाल जी आपसे खास तौर पर मिलना चाहते हैं। हाँ यार, चले जाओ, चंद्रशेखर ने कहा। हम लोग तब तक भाभी से गप लड़ाते हैं। तुम नहीं चलोगी, रफ्फन ने जन्नत से पूछा। मैं क्या करूंगी जाकर, हिंदी की बेहुदा शायरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। शंकर दयाल जी की भाषा तो बड़ी सरल होती है भाभी, शारदा बोली। सरल हो चाहे परल, जन्नत ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। सीधी बात यह है कि हिंदी में शायरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि तुम हिंदी नहीं जानती, रफ्फन ने पूछा। रफ्फन भाई, शारदा ठनकी, यूं ही काफी देर हो चुकी है। अच्छा भाई, हम चल दिए, रफ्फन ने कहा। जरा बाल तो बिगाड़ लो, चंद्रशेखर ने कहा। जवाहर नगर जा रहे हो तो पूरी तैयारी से जाओ। शारदा रफ्फन को घसीटने लगी। रफ्फन शारदा के साथ चला गया। घर में अपने पीछे एक सन्नाटा छोड़ गया। इस सन्नाटे की परिभाषा सबके लिए अलग अलग थी। ये सन्नाटा राम अवतार से शारदा की बात कर रहा था, जन्नत से रफ्फन के अतीत की और चंद्रशेखर से उसके बदन की थकन और आत्मा पर चढ़ने वाली धूल की। चंद्रशेखर कुर्ते के मटमैले दामन से ऐनक का शीशा साफ करने लगा। राम अवतार अपनी हथेली पर चमचे से जरा जरा शक्कर गिराकर फंकी मारने लगा और जन्नत जल्दी जल्दी चाय के गंदे बर्तन समेटने लगी। तुम शारदा से शादी करके ये किस्सा खत्म क्यों नहीं करते? चंद्रशेखर ने नाक पर चश्मा जमाते हुए एकाएक कहा। कौन सा किस्सा? राम अवतार ने शक्कर का आखिरी चमचा हथेली में उडेलते हुए पूछा। टाइट शलवार और टाइट शर्ट का किस्सा। राम अवतार चमचे को ट्रे में रखने के बाद अपनी हथेली साफ करने लगा जो चिपचिपा रही थी। जन्नत ट्रे लेकर बावर्ची खाने की तरफ चली गई। कोई कह रहा था कि रफन जवाहर पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल होने जा रहा है, राम अवतार ने कहा। माला बूढ़ी हो जाएगी तो निकाल दिया जाएगा, चंद्रशेखर ने बड़ी बेदर्दी से कहा। कैसी बातें करते हो? वो मेरी बहन है तो क्या इसलिए मैं उसके बारे में झूठ बोलूं? सूडो इंटेलेक्चुअल से डरना चाहिए, और अगर वो माला की तरह खूबसूरत हो तो उससे कोसों दूर रहना चाहिए। किससे दूर रहना चाहिए? जन्नत आ गई। एक किताब की बात हो रही थी, राम अवतार ने झट से कहा। नहीं, चंद्रशेखर ने कहा, हम लोग माला की बात कर रहे थे। अच्छा, जन्नत ने बड़ी बेताल्लुकी से कहा। राम अवतार और चंद्रशेखर दोनों ही भांप गए कि जन्नत की बेताल्लुकी नकली है। चलो भाई चलते हैं, चंद्रशेखर खड़ा हो गया। भाभी जी कुछ देर उदास रहना चाहती हैं। उदास क्यों होने लगी मैं? माला को ये कभी ना भांपने दीजिएगा कि आप उससे डरती हैं। जन्नत अंदर से कांप गई। यही मैं राम अवतार खां को भी समझा रहा था। राम अवतार न जाने क्यों झल्ला गया। उसकी झल्लाहट देखकर चंद्रशेखर बेसाख्ता हंस पड़ा। जवाहर नगर एक ऐसी बस्ती है राम अवतार, जिसके पास नई वैल्यूज है नहीं और जिसने पुरानी वैल्यूज को छोड़ दिया है। जहां आदमी कार की लंबाई चौड़ाई से नापा जाता है, जहां दोस्तियां और दुश्मनियां तनख्वाह के तराजू में तौली जाती हैं। 250-60 रुपए पाने वाला एक हिस्ट्री शीटर तो इस काबिल भी नहीं है कि वहां कोई उसे पहचाने, पर साहित्य फैशन में है। रफन को कॉफी और विस्की पिलाकर वहां के लोग उसकी शायरी सुनेंगे, पर सैयद अली रफअत को कोई घास नहीं डालेगा। ये उर्दू शायरी एकदम से फैशन में क्यों आ गई है? राम अवतार ने घबरा कर बात बदलनी चाहिए। चंद्रशेखर मुस्कुरा दिया। इसलिए कि उसे हम लोग फॉरेन समझने लगे हैं, इम्पोर्टेड माल। और तुम क्या समझते हो? मैं अपने आप से कभी मुलाकात हो गई तो पूछ कर बता दूंगा। अच्छा भाभी, हम तो चल दिए। वो चला गया। ये शेखर भाई आज इतनी कड़वी बातें क्यों कर रहे थे? जन्नत ने पूछा। ये कड़वाहट ही तो आज की ताजा खबर है भाभी, राम अवतार उदास हो गया। जवाहर नगर जैसी बस्तियां एक सवालिया निशान के हुक में टंगी हुई हैं। शेखर बात ठीक कह रहा था। मार्क्सवादी होने के नाते हम जवाहर नगर का विरोध नहीं कर सकते, पर जवाहर नगर हलक से उतर भी नहीं रहा है। शेखर के दोस्त राम अवतार को शेखर की बहन माला ने दिल्ली में एक खासी बड़ी नौकरी दिलवा दी है, पर मैंने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मैं यहाँ INTUC को पनपने नहीं दे रहा हूँ। आप शारदा को समझाती क्यों नहीं भाभी? हैं? जन्नत भौचक्की रह गई। और क्या, इतनी टाइट शर्टें पहनने की क्या जरूरत है? आप शादी क्यों नहीं कर लेते? नारायणगंज का राम अवतार जवाहर नगर की शारदा को रखेगा कहाँ? मेरा प्यार शायद उसे दिखाई नहीं देता, और उसकी टाइट शर्ट को सारा बाजार देख रहा है। ढीले ढाले कपड़े पहनकर साइकिल चलाने में परेशानी होती होगी। पता नहीं, और चाय बनाओ, एक एक प्याली हो जाए। नहीं भाभी, अब चलूंगा। बैठिए भी, बात यह है कि जन्नत चाहती थी कि वो न जाए, क्योंकि उसके जाने के बाद वो अकेली हो जाएगी और ये सोचने लगेगी कि जवाहर नगर की औरतें उसके रफन को निगाहों से चाह रही होंगी। कभी कभार उसे ये डर भी लगा करता था कि कहीं रफन किसी से फंस न जाए, पर माला के बारे में तो वो खुद ही उसे बता चुका था। और जन्नत दिल ही दिल में ये बात भी मानती थी कि माला उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, और ये कि उसे अपने हुस्न को संभालना भी आता है। और फिर वो जो डॉक्टर कमाल ख्वाजा है, उनकी बीवी जमीला अपनी नंद हजेरा समेत अलग चुई पड़ती है रफन पर। मिस रीना राय रफन से गालिब पढ़ना चाहती हैं, और जब रफन ने कहा कि जन्नत उर्दू में एमए है, वो पढ़ा देगी, तो मुर्दी ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कि रफन ख्वामखाह अपनी बीवी की तारीफ कर रहा हो, जैसे जन्नत सूरत से मिडिल पास लगती हो। कहाँ एमए और कहाँ जन्नत, ये मुंह और मसूर की दाल। जवाहर नगर वालियां वाकई ये मानने को तैयार नहीं थीं कि जन्नत एमए कर चुकी है, क्योंकि जवाहर नगर में माला के सिवा कोई लड़की एमए पास थी ही नहीं। आधी से ज्यादा माएं बेपढ़ी थीं और 3/4 से ज्यादा बेटियां सीनियर कैम्ब्रिज वाली थीं। नहीं, एक मिसेज डॉक्टर राम कुमार चौबे भी थीं। उन्हें एमए पास करने और खाना पकाने का शौक था। 8-9 चीजों में एमए कर चुकी थीं, पर उनका शुमार औरतों में कम और एंटीक में ज्यादा होता था। सहगल साहब के पास एंटीक फर्नीचर था। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को एंटीक चाइना जमा करने का शौक था। जे सिंह के पास एंटीक कलमदान थे। डॉक्टर ख्वाजा के पास औरंगजेब के हाथ का लिखा हुआ कुरान था। डॉक्टर राम कुमार चौबे के पास एक मिसेज राम कुमार चौबे थी। मिसेज राम कुमार चौबे जवाहर नगर में बहुत संभाल के रखी जाती थीं। कोई उन्हें पसंद नहीं करता था, पर माला तक उनके आगे पीछे लगी रहती थी, क्योंकि डॉक्टर राम कुमार चौबे जवाहर नगर प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन थे, और शंकर दयाल जी के आने से श्रीमती चौबे का महत्व थोड़ा सा और बढ़ गया था। शंकर दयाल जी वैसे तो जवाहर नगर कल्चरल सेंटर के मेहमान थे, तो उनके ठहरने का बंदोबस्त चीफ इंजीनियर साहब के बंगले पर किया गया था, पर वो मिसेस चौबे के भाई निकल आए और स्टेशन से सीधे उन्हीं के घर चले गए, तो जवाहर नगर की सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी डॉक्टर चौबे के घर की तरफ सरक गईं। मगर शंकर दयाल जी के आने से डॉक्टर चौबे के घर में एक क्राइसिस भी हो गया। श्रीमती चौबे का ज्यादा वक्त अगले एमए की तैयारी और पूजा पाठ में गुजरा करता था, और शंकर दयाल जी के साथ श्रीमती रुकैया दयाल भी आ गईं। श्रीमती चौबे रुकैया को न तो निगल सकती थीं और न ही उगल सकती थीं। और सच्ची बात तो ये है कि रुकैया शंकर दयाल जी से भी उगली या निगली नहीं जा रही थीं। रुकैया में सबसे बड़ी खराबी ये थी कि वो हिंदी शायरी का खुले आम मजाक उड़ाया करती थी। लखनऊ अंजुमने तरक्कीय हिंद की वर्किंग कमेटी की मेंबर थी। शंकर दयाल जी और रुकैया की शादी प्यार की शादी नहीं थी, सहूलियत की शादी थी। शंकर दयाल एक पॉपुलर राइटर थे, रुकैया शादी की उम्र से निकली हुई एक खूबसूरत लड़की थी। शंकर दयाल की दूसरी पत्नी पागल थी, पहली का देहांत हो चुका था और वो पीछे अपनी 3 बेटियां छोड़ गई थीं। चौथा बेटा हुआ इस पागल पत्नी से, फिर 5वीं बेटी हुई, 4 अबॉर्शंस हुए, यानी कुल मिलाकर शंकर दयाल जी 9 बच्चों के बाप थे। जब वो शराब के 4 पेग उतार लेते तो अपनी ट्रेजिक जिंदगी बयान करना शुरू कर देते। उनकी आंखें भीग जाती, उनकी बातें सुनने वाली औरतों के दिल पसीज जाते। इतना महान लेखक और उसकी ये जिंदगी, नतीजे में किसी न किसी से माइल्ड फ्लर्टेशन शुरू हो जाता और शंकर दयाल जी 2-4 कहानियां लिख मारते। मौका मिल जाता तो अपनी फैनों में से एक आध के साथ वो 100 सुला भी लेते। अपनी ट्रेजेडी सुनाते सुनाते शंकर दयाल जी को खुद अपनी जिंदगी की ट्रेजेडी का यकीन सा हो गया था, और किसी ने उनसे ये पूछने के बारे में सोचा ही नहीं कि यदि दूसरी बीवी ऐसी पागल है तो ये 2 बच्चे और 4 अबॉर्शंस कैसे हुए। रुकैया की जिंदगी भी शंकर दयाल जी की जिंदगी की ही तरह सोगवार और ट्रेजिक थी। वो रफन के सोग में सफेद कपड़े पहनने लगी थी। रुकैया का किस्सा ये हुआ कि जब शादी की उम्र थी तो उसे कोई लड़का पसंद ना आया, और जब वो शादी के लिए डिस्परेट हुई तो पता चला कि उसकी खेप के तमाम लड़कों की शादियां हो चुकी हैं। ऐसे में उसने रफन पर हाथ मारा था, पर रफन बड़ा बैकवर्ड निकला। फ्यूडल, दोस्त की बहन, कजन भी नहीं है, सगी बहन है। और रुकैया देख रही थी कि उम्र है कि भागी जा रही थी। आंखों के कोनों में लकीरें पड़ने लगी थीं। रात को सोने से पहले वो एक एक लकीरें गिनती। थोड़े दिनों में हाथों की नसें छिपाना असंभव हो जाएगा। साथ की लड़कियां बच्चों के पालन पोषण में लग चुकी थीं। कंवारी लड़कियों की महफिल में वो अपने आप को अजीब अजीब सा महसूस करती थी। लगभग 1.5 पीढ़ियों का फर्क था। इन नई लड़कियों की भाषा रुकैया की समझ ही में नहीं आती थी। जिस संगीत पर लड़कियां उछलने लगती थीं, वो रुकैया को शोर लगता था। जिन शायरों पर रुकैया सिर धुनती थी, वो शायरी उन लड़कियों को छूती ही नहीं थी। धीरे धीरे वो अंदर से अकेली होने लगी। धीरे धीरे समय बरसात के पानी की तरह रिस कर उसके बदन पर आने लगा। और ऐसे में शंकर दयाल से उसकी पहली मुलाकात हुई और दोनों की शादी हो गई। शंकर दयाल बीवी के होते शादी नहीं कर सकते थे, तलाक दे नहीं सकते थे, तो वो चुपचाप शंकर दयाल से मोहम्मद हुसैन हो गए। पर वो अपने मोहम्मद हुसैन होने का ऐलान नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये बात उनके पाठकों में कमी कर देगी। नए कथाकार अपने कथन के रेले में यूं ही उन्हें बहाए लिए जा रहे थे, इसलिए वो शंकर दयाल ही बने रहे और उनकी पत्नी रुकैया उनके साथ उनकी रखैल बनकर रहने लगीं। उनके फ्लैट के दरवाजे पर 2 तख्तियां लगीं, एक उनके नाम की, एक रुकैया के नाम की। कानून किसी बालिग औरत को किसी की रखैल बनने से नहीं रोक सकता। मिसेज राम कुमार चौबे को ये रुकैया वाली बात मालूम थी, पर वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो रुकैया को उनके घर ले आएंगे। मगर श्रीमती चौबे को ये बात नहीं मालूम थी कि रुकैया शंकर दयाल जी की सेक्रेटरी भी हैं। ये बात माला को मालूम थी और उसने शंकर दयाल जी को खास इसीलिए बुलवाया था। वो रुकैया और रफ्फन का आमना सामना करवा के तमाशा देखना चाहती थी। माला रफ्फन से खफा थी। वो क्लब के बड़े हॉल के एक कोने में बैठी रफ्फन और रुकैया का तमाशा देख रही थी। रुकैया ने रफ्फन पर पूरा कब्जा जमा लिया था। रफ्फन ये बात और रफ्फन वो बात। मैं तो आज रात को ही यहाँ से निकलने की सोच रही थी, पर तुम्हारी बेगम से मिले बिना कैसे जा सकती हूँ। माला कह रही थी कि वो बड़ी खूबसूरत लड़की है, सुना पढ़ी लिखी भी है। शंकर जी, यही वो रफ्फन है जिनकी बातें मैं आपको सुनाया करती हूँ। भाई अल्लाह, रफ्फन आज वो नज न सुनाना। तुम्हारी आंखें, अब ये वैसी आंखें कहाँ रह गई हैं? रुकैया वास्तव में शंकर दयाल जी को जलाना भी चाहती थी। वो इंस्पिरेशन के लिए फिर इधर उधर देखने लगे थे। नारायणगंज आते हुए रास्ते में वो जलकर यहाँ तक कह गए कि वही बेवकूफ थे कि रुकैया से शादी करने की बेवकूफी कर बैठे। 1.25 लाख मेहर देकर तलाक दे दो। 1.25 लाख? रुकैया का दाम 1.25 लाख? साले इस्लाम की ऐसी तैसी। कालीचरण अपनी कविता सुना रहा था और शंकर दयाल उर्फ मोहम्मद हुसैन इस्लाम रुकैया और 1.25 लाख के मेहर के त्रिकोण को गालियां दे रहे थे। रुकैया और रफ्फन एक ही सोफे पर थे। रुकैया ने उसे अपने और शंकर दयाल जी के बीच में अणस लिया था और उसका बदन लगातार रफ्फन के बदन से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था और रफ्फन का बदन दम साधे चुपचाप पड़ा हुआ था। उसी रात ठाकुर साहब की हवेली के डिनर में हाजी मोहम्मद रफी बीड़ी वाले से रफ्फन की पहली मुलाकात हुई। ठाकुर साहब ने बड़ी तिकड़मों से ये डिनर अरेंज किया था। वो शंकर दयाल जी से मिलना चाहते थे कि शंकर दयाल जी का लखनऊ और दिल्ली दोनों ही शहरों पर बड़ा गहरा असर था। केंद्रीय इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शंकर जी के क्लास फेलो थे। दर्जा 4 से लेकर मिडिल तक दोनों ने साथ पढ़ा था और कहते हैं कि लखनऊ के मुख्यमंत्री शंकर जी के बिना निवाला नहीं तोड़ते, तो ऐसे आदमी को ठाकुर साहब भला हाथ से कैसे निकल जाने देते। जब से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की बेटी की शादी मक्खनलाल के भांजे से हुई थी, ठाकुर साहब की रातों की नींद हराम हो गई थी। मक्खनलाल जी कई बार ये कहते सुने जा चुके थे कि यदि अपनी प्यारी जनता की खिदमत करने के लिए मुझे फ्लोर क्रॉस करके कांग्रेस में भी जाना पड़े तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। ये ठाकुर साहब के लिए खुली चुनौती थी कि जो करना हो कर लो, हम तो कांग्रेस के टिकट पर एमपी होने जा रहे हैं। ठाकुर साहब को राम अवतार और मक्खन लाल के गठजोड़ से भी परेशानी हो रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी का टिकट भी कांग्रेस के ही टिकट के बराबर था। ठाकुर साहब का पौआ भी खासा भारी था और उन्हें लगभग यकीन दिलाया जा चुका था कि टिकट बाबू चिरौंजी लाल एडवोकेट हाईकोर्ट हाल प्रैक्टिस तहसील और परगना नारायणगंज को ही मिलेगा। फिर भी ठाकुर साहब कोई चांस लेना नहीं चाहते थे। मक्खन साले की गांड में गधे का हल ना चलवाया तो ठाकुर नहीं चमार। अब ऐसी टेंस सिचुएशन में तहजीबुल के चोंचले झेलना मुमकिन नहीं था। वो तो शंकर दयाल जी को मक्खन लगाने में लगे हुए थे और इसीलिए उन्हें रफ्फन को भी दावत देनी पड़ी थी, नहीं तो कहाँ एक स्कूल मास्टर और कहाँ ठाकुर साहब का ड्राइंग रूम। पर जब उन्हें पता चला कि रफ्फन रुकैया का पुराना दोस्त है तो उन्होंने रफ्फन को बुलवाना जरूरी समझा। अब ठाकुर साहब तो शंकर दयाल जी की बोझिल शब्दावली के नीचे पिसे जा रहे थे और रुकैया ने रफ्फन पर कब्जा जमा रखा था। माला जी सिंह को भुगत रही थी और तहजीबुल अकेला पड़ गया था। उसे अकेला पड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वो कुछ उखड़ा उखड़ा सा था और मुंह फुलाए एक तरफ बैठा रुकैया से जल रहा था। उसने अपनी टांगें चढ़ा ली। वो स्कूल की तरफ से शंकर दयाल जी को माला पहनाने बुलाया गया था। हाजी मोहम्मद रफी बीड़ी वाले भी आए हुए थे, जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को बीड़ी की तिजारत की बारीकियां समझा रहे थे। बीड़ी में न कागज होता है न तंबाकू, तो कैंसर का सवाल ही नहीं उठता। सरकार जरा दिलचस्पी ले तो बीड़ी फॉरेन एक्सचेंज कमाने का जरिया बन सकती है। अरे भाई आजिज साहब, ठाकुर साहब ने घबरा कर आजिज साहब को आवाज दी, वो कसीदा हो जाए। मौलवी अली अहमद आजिज अपनी अचकन का दामन बराबर करते उठ खड़े हुए। ये हमारे उर्दू टीचर हैं, ठाकुर साहब ने कहा, इन्होंने जिद की कि आप पर एक कसीदा जरूर पढ़ेंगे। उधर लोगों को वार्निंग देने के लिए अली अहमद आजिज ने जोर से गला साफ किया, फिर गुनगुनाने लगे और फिर गला साफ करके उन्होंने मतला सुनाया, जो कल न थे वो आज हैं शंकर दयाल जी, हम सब के सर का ताज हैं शंकर दयाल जी। ठाकुर साहब उछल उछल के तारीफ करने लगे। हाजी साहब ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, बाकी सारा मजमा खामोश रहा। शहरे अदब से छांट के जाहिल अलग किए, हम सब में कामराज हैं शंकर दयाल जी। तहजीबुल की हंसी छूट गई। ठाकुर साहब बोले, रफी मियाँ तुम्हारा बेटा बड़ा शरीर हो गया है। हाजी साहब खुश हो गए। बंद करवा दीजिए किसी कमरे में, हाजी मोहम्मद रफी बीड़ी वाले ने कहा। चल, ठाकुर साहब ने तहजीबुल के कान पकड़ कर कहा। तहजीबुल मचल गया, तमाम लोग हंसने लगे।